ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। खुशी को अब एक नए अंदाज से देख रहे हैं। खुशी यानी कि कंटेंटमेंट यानी कि स्टेबिलिटी। और अब अगर हमने उन फैक्टर्स को देखना शुरू किया है जो हमारे इस हैप्पीनेस इंडेक्स को अनस्टेबल या ऊपर नीचे करते हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें जिन्हें हम अभी तक नेचुरल मान रहे थे और ऐसा लगता था कि इन पर हमारा कोई जोर नहीं है, वो समझ में आ रहा है कि पावर मेरे अपने हाथ में है। एक्चुअली एनी टाइम द मोमेंट आई अंडरस्टैंड, जैसे ही मुझे पता चला कि ये वो फैक्टर्स हैं जो मेरी इस हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं मुझसे या मैं नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ, वो मैं अब कर सकता हूँ। जैसे ही मुश्किल सामने आती है तो उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है। कुछ और फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
ओम शांति।
अगर हमने पास्ट को देखा सिस्टर शिवानी, अमेजिंग व्हाट वी हैव टॉक्ड एक्चुअली इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स, इसके पास्ट। और एक्चुअली मैंने ट्राई भी किया कल कि मैं कहीं थी और 2 घंटे के लिए ड्राइव, क्योंकि हमारे ट्रैफिक में फंसे हुए थे, आई रियलाइज्ड कि हम जो भी बात कर रहे थे या तो वो सचमुच पास्ट से जुड़ा हुआ था, उसको एनालाइज कर रहे थे, उसको देख रहे थे, या कुछ ना कुछ हम फ्यूचर के लिए बात करने की कोशिश कर रहे थे, यू नो कि हाउ इट विल बी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आई एक्चुअली ट्राइड, मैंने उनसे भी कहा कि लेट्स ट्राई टू रिमेन इन प्रेजेंट, एंड वी बिकेम साइलेंट।
There was nothing to talk about.
Yes. You know, because present में आते ही traffic दिख रहा था फिर सामने। So actually, how to be in really in present? उस पे बात थोड़ा सा करना चाहूँगी।
It is very important when we are saying being in the present, कि present moment में my state of mind क्या है? होता क्या है कि जैसे ही हम past या future के बारे में सोचते हैं, पहले सोचते हैं फिर discuss करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी state of mind fluctuate होने लगती है। पास्ट की अगर कोई अनप्लेजेंट के बारे में सोचा तो हर्ट आएगी बात में, एंगर भी आ जाएगा, क्रिटिसिज्म होने लगेगी, सो वी गो लाइक दिस। फ्यूचर आएगा तो एंटिसिपेट करेंगे कि ये होगा, खुश होंगे, फिर फियर आएगा कि हो सकता है नहीं हो। तो ये बहुत सारी जो अनस्टेबल कर देती हमें, ये सारी इमोशंस ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जाती हैं। बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, इट डजंट मीन यू कांट टॉक अबाउट द फ्यूचर, कि अगर आप बात कर रहे हो कि कल सारा दिन में हमें क्या करना है, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि मन की स्थिति, आई एम हैप्पी नाउ। सी व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर वी से ये होगा तो अच्छा होगा, ये होगा यू नो, ये होगा तो बहुत अच्छा होगा, ये होगा तो बहुत खुशी होगी, और अभी ऐसे ऐसे जा रहे। यू कैन प्लान व्हाट यू वांट टू डू फॉर टुमारो, बट राइट नाउ चेकिंग कि हैप्पीनेस उस पर डिपेंडेंट नहीं है, हैप्पी तो मैं ऑलरेडी
हूँ
अभी। नॉट कंडीशनिंग योर माइंड प्रोग्राम में, हमें पता ही नहीं चलता, हम अनअवेयर हैं कि हम अपने माइंड को कंडीशन करते जाते, जब ये होगा ना तो तुम खुश होगे, जब ये होगा तो तुम खुश, तो वो माइंड प्रोग्राम कर लेता है और वो वेट करता है कि ये होगा तो मैं खुश होगा, और फिर वो डिपेंडेंसी, फिर वो फियर, ये सब आता। तो इम्पोर्टेंट है माइंड की स्टेबिलिटी को अभी देखते रहें कि यस दिस विल हैपन बट माय हैप्पीनेस इज नॉट
डिपेंडेंट। आई थिंक टू समवेयर व्हाट वी नीड टू डू इज दैट सी मेरी अभी प्रेजेंट में मेरी सिचुएशन क्या है, यू नो मेरी मेंटल स्टेट क्या है, फिर मैं पास्ट को भी एनालाइज कर सकती हूँ और फ्यूचर के बारे में भी एंटिसिपेट या जो प्लानिंग है वो की जा सकती है।
लेकिन जब भी वो सब कुछ कर रहे हैं, कीपिंग द फोकस ऑन माई स्टेट ऑफ बींग, क्योंकि सारा कुछ जो हो रहा है, सपोज हम पास्ट में भी किसी हर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, ऐसा किया, आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई माय हर्ट, तो जस्टिफाई करने से मैं खुश नहीं हो जाऊंगी, यू नो मुझे लगता है आई एम राइट जब मैं जस्टिफाई करती हूँ, बट आई वॉन्ट बी हैप्पी बाय दैट, आई विल हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ टू बी हैप्पी, टू बी स्टेबल, एंड वंस आई डू दैट I will not blame anyone for the hurt. Right now, my mind is still blaming other people for the hurt. And that's why I want to talk about it. I want to discuss it. The day I'm able to tell myself ki nahin, main theek hoon, main stable hoon, mujhe zarurat nahin lagegi. Kyunki main unko ab zimmewar nahin thehraungi apne dard ke liye. Mujhe ye pata hai ki ye maine kiya, maine create kiya, mujhe finish karna hai. So then I will be very stable. See, discuss karna, lekin uska result kya? हम डिस्कस करते हैं सो दैट वी विल फील बेटर, चलो मेरे साथ कुछ हुआ, लेट मी गो एंड टॉक टू समबडी अबाउट इट। तो बात करने से क्या हो जाएगा, मैं आपको बात करूँगी कि आपको पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, फिर आप ऊपर से बोलेंगे अच्छा उन्होंने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए
अच्छा,
था
तो, उनको आपके साथ। दो जने जब हों तो, और 2 घंटे हमने निकालने, तो बात क्या करें फिर?
अगर आपको पास्ट की कोई बात से सीखना भी है और आप 2 जने बात कर रहे हैं, Wouldn't it be nice to discuss that what I went through when I went through this incident? मैंने क्या लर्न किया, how did I grow and how I am growing.
That's what I'm saying.
See, as long as pura focus apni personal internal growth ke upar hai, to usse kya hoga? Aap empowered hote jayenge. And aapki jo wo discussion hogi, agar do logon ke saath hai, aapki discussion dusre ke liye bhi empowering hai. Kai bar hame realize hi nahi hota ki jab hum ek dusre ko phone karke ya ek dusre se baat karte hue ghanton ghanton unko apni वो वाली कहानियाँ सुनाते रहते हैं जहाँ लोगों ने हमें धोखा दिया. अदर पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड समटाइम्स एंड हम क्या कर रहे हैं, अपना दर्द अपना वो सारा हम दूसरे को भी दे रहे हैं. पहले ही सामने वाले के पास अपना शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स है. सो शेयरिंग एंड डिस्कसिंग हर्ट एंड पेन डजंट क्रिएट एनी
एक्चुअली क्रिबिंग
क्योंकि फिर क्या होता है वो हर्ट डिस्कस करते करते हम अभी पेन में चले जाते हैं. दैट इज व्हेन हमने पास्ट का इमोशन प्रेजेंट में कैरी फॉरवर्ड किया, फिर आज डिस्कस किया तो वो और पक्का हो गया, फिर इसको हम कल भी डिस्कस करेंगे वो और पक्का होता जाएगा. एंड देन माई एवरी डे इज इन हर्ट. इट्स नॉट जस्ट yesterday, but it's today, then it's tomorrow, and it's every day. That's where it becomes very damaging. Because then, वो मेरा एक दर्द में रहने का ही संस्कार बनता जा रहा है.
So somewhere that actually that is needed to be checked. So वो अब हम check करने लग गए हैं. और wonderful, you know, the way it is coming out कि जब हम देखना शुरू करते हैं तो हमें realization होता है कि हम कर क्या रहे थे.
जैसे आपने देखा तब आपको रियलाइज हुआ. अभी तक तो हमें रियलाइजेशन भी नहीं थी कि हम कितना पास्ट और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं.
अनदर फैक्टर व्हिच एक्चुअली आई विल से नाउ आई एम वेरी केयरफुल व्हाट आई एम गोना से इज दैट आई एम नॉट एबल टू क्रिएट दैट हैप्पीनेस. आई एम नॉट सेइंग इट टेक्स अवे माय हैप्पीनेस. इज दैट आई गेट सो स्ट्रेस्ड आउट एंड लाइक वी आर ऑल लिविंग इन दिस एरिया. मतलब जो हमारा काम का या जिंदगी का हर रोज का, मतलब घर तक पहुँचते पहुँचते ट्रैफिक में 2 घंटे आपको लगते हैं. उस पूरे प्रोसेस में जो आपको चीज़ें वहाँ पे होनी हैं या करवानी है, इट्स सो स्ट्रेस्ड आउट एंड यू फील सो स्ट्रेस्ड आउट. सो व्हाट इज़ टू बी डन अबाउट दैट.
उसके भी हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम्स बने हुए हैं जिनको पहले चेक करेंगे तो स्ट्रेस अपने आप वी विल बी एबल टू फ्री फ्रॉम दैट. कि पहली बात तो स्ट्रेस शब्द को ही देखें तो इट्स अ वेरी न्यू वर्ड इन द वोकैबुलरी. आई थिंक अगर हम 15-20 साल पहले जाएं तो हमारी वोकैबुलरी में ये कोई वर्ड नहीं था, स्ट्रेस वर्ड नहीं था. हम कहते थे चिंता, हम कहते थे टेंशन, लेकिन अभी तो स्ट्रेस मतलब वी आर जस्ट टेलिंग आर सेल्फ कि हम एक स्टेप हायर होते जा रहे हैं. और ये आज हम सिर्फ कॉरपोरेट और इस सर्कल में नहीं लेकिन स्टूडेंट्स भी इस वर्ड को यूज़ करते हैं. जिस एज ग्रुप को हम कहते थे बेस्ट लाइफ, यू नो स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ एंड That's become most one difficult. Of the most difficult.
Most difficult. I didn't say worst, but yes, one of the most difficult because I'm seeing children going through so much of again stress, and it's just a thought process, you know. अपने ही thought process को ऐसे create करते हुए. Another thing which I want to ask, Sister Shivani, is that is it the stress we are creating, or is it like you know ऐसे ऐसे situations जो आती जाती हैं. और हमने अपने आप को कंपटीशन में डाल दिया है. मैं ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हूँ या आप?
ये एक स्टेटस सिंबल है आज भी क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में नहीं हैं, आप एकदम रिलैक्स्ड हैं, दैट मींस तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं.
क्योंकि अगर कोई फर्क पड़ता है,
अगर कोई कुछ कर रहा है, इफ समवन इज इन द रेस एंड वो कंपटीशन में है, उसको स्ट्रेस तो होना ही होना है. एंड दैट इज व्हाई द डीपेस्ट बिलीफ सिस्टम जो है वो है कि स्ट्रेस इज नॉर्मल. ये तो नॉर्मल है,
ये तो होना ही चाहिए. हमसे लाइक मेरा बच्चा तो हमसे देयर वाज वन मदर हु सेड शी इज नॉट इवन बॉदर्ड, शी इज नॉट इवन स्ट्रेस्ड आउट.
सी शी इज नॉट इवन कंसर्नड एंड शी इज नॉट इवन स्ट्रेस्ड. ये दो अलग सेंटेंसेस हो गए. एक है कि आप केयरलेस हैं, आपके एग्जाम है, आप पढ़ नहीं रहे, आप केयरलेस हैं. लेकिन एक है आप स्ट्रेस्ड हैं. हम दोनों चीज़ों को सेम कैसे बोल सकते हैं?
लेकिन हम दोनों चीज़ों को एक ही मानने लग गए हैं.
अभी एक है कि मेरा एग्जाम है कल, मुझे पढ़ना है, पर मैं पढ़ नहीं रही, दिस इज़ केयरलेसनेस. तो कोई कहे कि यू आर नॉट कंसर्न्ड या यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर स्टडीज. लेकिन एक है कि मुझे इतना ज़्यादा वो यू नो दर्द ने घेर लिया है कि अब क्या होगा, कल क्या होगा, मेरे से नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल है. अगर मेरा नंबर ठीक नहीं आया तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या सोचेंगे. ये जो एक होल विशियस साइकिल ऑफ नेगेटिव थॉट्स जो हमें पकड़ लेता है, तो हम पढ़ने भी अगर बैठते
पढ़ाई
तो हमसे पढ़ाई नहीं होती. और तब हम कहेंगे कि आई एम अंडर स्ट्रेस. एंड तब ऐसी स्थिति में हम पढ़ते भी हैं लेकिन इट डजंट रियली गो इन, क्योंकि माइंड तो, मन नहीं तो पढ़ना है बैठ के, तो माइंड एंड इंटेलेक्ट हैज़ टू सिट एंड स्टडी, लेकिन वो मन तो इस साइकिल ऑफ थॉट्स में चला गया है, तो वो उसमें कैसे जाएगा? और फिर इतना पढ़ने के बावजूद भी जो हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, इट डजंट रियली हैपन दैट वे.
एंड देन वी से कि हमने इतना काम किया था, इतना किया था और
क्योंकि कितनी बार हम स्कूल में कहा करते थे कि मुझे सब कुछ आता था, यू नो, आज मुझे एग्ज़ाम में सब कुछ आता था, लेकिन मेरे से ये केयरलेस मिस्टेक हो गई. तो केयरलेस मिस्टेक यूज़ टू बी अ वेरी कॉमन वर्ड, कि और वो केयरलेस मिस्टेक बाद में ऐसे लगती है कि इतना ईजी था. एंड यू समटाइम्स हैव टू आस्क योर सेल्फ, हाउ कुड आई मेक दिस मिस्टेक? मैंने सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस तो कर दिए और उसमें इतनी छोटी बात पर मैं कैसे ये गलती कर सकती हूँ? But that itself is a sign कि mind alert नहीं था. तो mind ने 2+2=4 लिखने की जगह 2+2=6 लिख दिया. मतलब ये कोई ये थोड़ी है कि मैंने पढ़ा नहीं था, ये भी नहीं है कि मुझे आता नहीं था, ये भी नहीं है कि मुझे याद नहीं, यू नो, कोई चीज़ें होती हैं मुझे याद नहीं आ रही उस टाइम मैंने पढ़ा था, लेकिन ये है कि सब कुछ पता होते हुए भी उस टाइम पता नहीं कैसे लिख दिया. दिस इज़ लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ अलर्टनेस, क्योंकि माइंड पे वो एंग्जाइटी, वो स्ट्रेस है. तो परफॉर्मेंस के लिए जो हम कहते हैं कि यू नो, टू परफॉर्म वेल इन द एग्ज़ाम, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू, इन फैक्ट यू शुडंट बी अंडर स्ट्रेस, बट यू हैव टू बी इन फैक्ट वेरी वेरी काम. आजकल तो सिखाया जाता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले बी रिलैक्स्ड, बी काम, क्योंकि जितना आपने किया है इट्स इम्पोर्टेंट कि वो आप बेस्ट देकर आए, बजाय कि आप इतना अपसेट हो जाएं कि जितना किया है. लेकिन ये बिलीफ सिस्टम भी हम ही तो बच्चों के अंदर डालते हैं. यू नो, अगर बच्चा आराम से है, आराम से पढ़ रहा है, तो पेरेंट्स कहेंगे टेंशन नहीं है तुमको, कल एग्ज़ाम है. क्यों? क्योंकि उनको बहुत टेंशन हुई हुई है. हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या हम कर रहे हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग टू अस. इट इज़ नॉट कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है. ना, हम क्या कहते हैं, प्रेशर बहुत है, कंपटीशन बहुत है, या सिलेबस बहुत है. इट्स नॉट दैट. आई थिंक हमने इससे ज़्यादा सिलेबस किए हुए हैं, लेकिन अभी है, कंपटीशन है. लेकिन जैसे ही मैं वो कंपटीशन को एंटिसिपेट करती, मैं साथ साथ एंटिसिपेट करती इनसिक्योरिटी ऑफ इफ़ आई डू नॉट पास इन दैट कॉम्पिटिशन, तो मैंने तुरंत क्या क्रिएट कर लिया, फियर. फियर जैसे ही क्रिएट किया, दैट इज स्ट्रेस. फियर कोई एग्जाम देने का नहीं होता है. नो वन इज स्केर्ड ऑफ गिविंग एग्जाम. मुझे जितना आता है आई विल गिव माई बेस्ट. फियर किस चीज़ का है?
पता नहीं जब रिजल्ट आएगा तो विल आई बी एबल टू डू.
अगर मैंने उतना अच्छा, सी दैट इज व्हाई वी से कि फ्यूचर में रहना क्यों इतना डैमेजिंग है. अगर आप अभी प्रेजेंट में हैं तो आप सिर्फ अभी के पढ़ने पर फोकस करेंगे, आपको कोई स्ट्रेस नहीं क्रिएट हो सकता. स्ट्रेस कौन सी थॉट से क्रिएट हो रहा है? अगर मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, मुझे अगर नई एडमिशन मिला, मेरा करियर, यू नो, ऑल दोज थॉट्स, तो फिर पढ़ने में मन कैसे लगेगा? तो ये जो प्रेजेंट में रहने की आदत है, इसको अगर हम नेचुरल करते जाते, ये हमें हर एस्पेक्ट पे मदद करती है. जैसे कल आपने कहा यू वर जस्ट ड्राइविंग, तो मे बी दैट टाइम इट डिडंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस. बट अगर आप एक प्रोजेक्ट के बीच में हैं, आप एक डेडलाइन पर काम कर रहे हैं, या जैसे आपका इस तरह से एग्ज़ाम है, कोई ऐसी चीज़ होती ना, अगर हमारे मन को प्रैक्टिस नहीं होती है, तो उस टाइम हम काम करने की बजाय हम ज़्यादा वो फ्यूचर और फ्यूचर का फेलियर ऑलरेडी देखकर वो फियर अभी क्रिएट कर देते हैं.
कितनी बार हम कुछ पढ़ रहे होते हैं और वो पढ़ के हम मतलब पेज के पेज पलट जाते हैं, पूरा का पूरा पेज पढ़ जाते हैं, हमें एक भी शब्द अंदर नहीं जाता.
दैट जस्ट शोज द पावर ऑफ द माइंड, के मन कुछ एक चीज़ करते हुए भी मन कुछ और सोच रहा है, क्योंकि मन को प्रेजेंट में लाने की आदत नहीं है. इसी तरह बच्चे पढ़ सकते हैं, पूरा टाइम पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज सबसे कॉमन जो कंप्लेंट है बच्चों की, दैट इज़ कंसंट्रेशन. एंड देन दे वांट टू आस्क द एल्डर्स, कंसंट्रेट कैसे करें? इट्स नॉट कंसंट्रेट कैसे करें, कोई टेक्निक नहीं है, हमें किसी ने नहीं सिखाया कंसंट्रेट कैसे करना है. इट इज़ जस्ट दैट राइट थॉट्स कैसे क्रिएट करें. एंड वो राइट थॉट्स फिर सिर्फ पढ़ने के टाइम आप नहीं सीख पाएंगे. यू नो, हम क्या करते, पूरा साल तो कोई भी थॉट्स चल रहे, कैसे अभी चल रहा,
बोलते हैं कि बैठो 5 मिनट साइलेंस में बैठ जाओ.
इट वॉन्ट हैपन.
प्रैक्टिस नहीं की हुई जब तक.
अब अगर जस्ट बिफोर द एग्जाम हम 5 मिनट साइलेंस में बैठे, तो कौन सी थॉट्स क्रिएट होंगे? वो साइलेंस में बैठते ही तो और सारी वो फियर वाले
तो डरने लगते हैं, और भी डर रहे होते हो.
Yes, it won't happen that time. And that is why ये जो हम art of thinking कि किस तरह की thoughts create करने हैं, ये अगर over a period of time करते आए हैं तो ये ऐसा नहीं होगा कि stress create करें फिर stress को कैसे finish करें, लेकिन stress create होगा ही नहीं. ये स्ट्रेस का क्रिएट होने का सबसे बड़ा कारण है ये फ्यूचर को एंटिसिपेट करना इस तरह से. एंड उसमें भी जैसे ही एंटिसिपेट करते फेलियर को अगर देख लेते और वो हमारा अभी फियर क्रिएट कर, और जब इतना फियर यहाँ क्रिएट हो जाता तो हाउ विल यू फील. अब आप उसको वर्ड स्ट्रेस दे दो, बट वी सो कि वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट्स इट मेक्स मी फील एब्सोल्युटली लो, एंड फिर वो लो फीलिंग के साथ आप प्रोजेक्ट करने बैठो या पढ़ने बैठो. How can you do well? It's not possible. The stress से लेकर कई एक belief systems हैं जिनको अगर हम check करें और change करें और फिर कल चलें अपने जीवन की यात्रा में, आधा काम तो वहीं हो जाएगा. क्योंकि जैसे हमने कहा tension तो normal है. Just ask anybody. आप 4 साल के बच्चे से ले लो and of course उस senior age group तक चले जाओ. Tension होती है आपको, किसी को tension होती है तो कहेंगे tension तो सबको होती है, ये कौन सा question है. Tension normal है, tension natural है. तो अगर वो normal है तो आप उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे.
Normal है तो होती है तो क्या करना है उसे खत्म.
नहीं तो वो तो फिर normal है. You know, let's say अगर यहाँ मेरे घुटने में दर्द नॉर्मल है मैंने बोल दिया उसको, तो फिर उस जब तक आई हैव अ रियलाइजेशन कि ये कोई चीज़ है जो अननेचुरल है, ये दर्द है, ये मेरा नेचुरल नहीं है कंफर्ट लेवल, तो मैं कुछ ना कुछ उसके लिए करूँ. लेकिन अगर मैंने स्वीकार कर लिया कि ये तो नॉर्मल है तो क्या होगा, उसी के साथ चलना शुरू कर देंगे.
उसके ऊपर आप बात काम ही नहीं करोगे ना, आप बाकी सारी चीज़ों पे काम करते जाओ.
आप नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मल क्या है इसका बिलीफ बहुत क्लैरिटी से चाहिए होता है. क्योंकि हम कंडीशनड हैं कि जो चीज़ नॉर्मल है मतलब वो ठीक है. जैसे ही हमने किसी चीज़ को कहा कि ये अननेचुरल है तो हम उसके ऊपर कुछ मेहनत करते. आप घर पहुंचे, आज आपको थोड़ा सा फीवर है तो आपने देखा थर्मामीटर पे 100 है, 101 है, तो आपको मालूम है कि ये नॉर्मल नहीं है. बिकॉज यू नो दैट इट इज़ नॉलेज. नॉलेज है कि ये जो ट्राइंगल मार्क जहाँ बना है वो ही नॉर्मल है. वो मर्क्यूरी उससे इतना भी ऊपर होगा ना थोड़ा सा, नॉर्मल नहीं है, मुझे बुखार है, आई विल इमिजिएटली टेक मेडिकेशन एंड आई विल गो ऑन टेकिंग माई मेडिसिन आफ्टर एवरी 6 आवर्स टिल दैट मर्क्यूरी कम्स टू दैट नॉर्मल मार्क. उसके बाद अगर मुझे नहीं भी ठीक लग रहा होगा ना, थोड़ा मेरे को अभी भी लग रहा है थोड़ा फीवरिश, लेकिन अगर मर्क्यूरी थर्मामीटर में दिख गया कि ये नॉर्मल है,
देन आई विल नॉट टेक द मेडिसिन.
देन आई विल नॉट. सी दैट्स व्हाई व्हाट इज नॉर्मल इज सो इम्पोर्टेंट. आई विल टेक मेडिसिन ओनली जब तक मुझे वो पता है कि ये नॉर्मल नहीं है. अब टेंशन के लिए क्यों नहीं मेडिसिन ले रहे, क्योंकि हमने कह दिया ये ही
नॉर्मल है, ये तो है, ये तो आज के इस पूरे युग में.
तो फिर हम उसको थोड़ी खत्म करने का कोई भी प्रयास करेंगे. इसलिए पहले तो ये बिलीफ सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से शेक करना पड़ेगा कि स्ट्रेस इज नेचुरल, स्ट्रेस इज नॉर्मल, दिस इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ. इसको चेक करना पड़ेगा कि टेंशन कुछ भी नहीं है, इट्स अ पेन. ये एक दर्द है जो आता है मुझे बताने के लिए कि मुझे कुछ चेंज करना है.
एक्चुअली हम थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस को कहते हैं नॉर्मल है, क्योंकि जैसे ही वो ज्यादा होने लगता है ना तब हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता, तब हम उसके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं. लेकिन थोड़ा
लेकिन तब भी हम उसके सॉल्यूशंस कहाँ ढूंढते
हैं. हाँ, वो जिस भी तरह से ढूंढ रहे होते हैं
कहाँ ढूंढते हैं कि ये सब ठीक हो जाए. हाँ, तब मेरा स्ट्रेस ठीक हो जाएगा. यस, दैट्स आल्सो वेयर आर वी लुकिंग फॉर दिस सॉल्यूशन. तो वी आर लुकिंग फॉर दिस सॉल्यूशन परिस्थिति के अंदर कि परिस्थिति ठीक हो जाए, किसी भी तरह परिस्थिति.
इस सिचुएशन में आपका ऐसे बिहेव करना तो नॉर्मल है, आपका स्ट्रेस में आना मतलब एग्जाम्स आ रहे हैं तो आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे.
तो फिर वही है ना, हमने अगर हम बच्चे को ये समझा सकें कि एग्जाम के टाइम पर रिलैक्स्ड रहना नॉर्मल है. कभी ये कहा कि रिलैक्स्ड रहना नॉर्मल है?
आई डोंट रिमेंबर.
या रिलैक्स्ड ही रहना है बच्चे? हाँ. नहीं, टेंशन होना तो नॉर्मल है. और खुद ही इतने टेंस्ड होते हैं, खुद के फेस और बॉडी.
ये कहते जाते हैं कि आप रिलैक्स रहो, रिलैक्स
वो रिलैक्स रहो भी कैसे कहते हैं, इट इज सो,
और वो हम खुद इतने टेंशन में होते
हैं एग्जाम के टाइम पे, द होल एनर्जी इन द हाउस इज वेरी डिफरेंट,
नोबडी कैन कम, यू नो, उसके राहुल के एग्जाम्स है ना, तो फ्रेंड्स नहीं आ सकते, रिलेटिव्स नहीं आएंगे, इट्स लाइक अमेजिंग द वे वी क्रिएट.
तो एक है कि बच्चे को पढ़ना है, उसको साइलेंस चाहिए, एक अलग कमरा आप दे दो, सब कुछ कर दो, लेकिन घर में जितना हो सके वायुमंडल भी हमें नॉर्मल ही रखना पड़ेगा. जितना हम नॉर्मल रखेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे, तो बच्चा भी फील करेगा ना कि हाँ सब कुछ नॉर्मल तो है, मैं एक एग्जाम ही तो देने जा रहा हूँ.
अंदर से नहीं नॉर्मल होते ना हम,
वही ना, अंदर होंगे तो बाहर भी तो ऑटो, लेकिन हमने ही वो एग्ज़ाम को इतना बड़ा, अब हो क्या रहा है, पहले तो फिर भी साल में एक बार एग्ज़ाम आता था, चलो पूरा साल तो चलता, अब वो एग्ज़ाम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है,
सितंबर में आएंगे, पहले फरवरी बोर्ड होंगे, फिर
वो वीकली कुछ टेस्ट होंगे, ये वट एवर. तो क्योंकि एवरी एग्ज़ाम एंड एवरी टेस्ट इज़ बिकमिंग लाइक दिस, तो ओवरऑल पूरा साल ही बच्चे का कैसे बीत रहा है, जैसे कि वो एक हाई प्रेशर उसमें यू नो वर्क कर रहा है, वो माइंड के लिए बहुत डैमेजिंग है. वही चाइल्डहुड जो हमारे लिए सबसे ब्यूटीफुल पीरियड हम कहते थे, आज वही बच्चे कहते हैं कि इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेस सीन. इवन विद बच्चे जो प्ले स्कूल के लिए एडमिशन के लिए जाते हैं, स्कूल्स के एडमिशन के लिए जाते हैं, उनको कितना स्ट्रेस है. डू यू थिंक एक 3 साल का बच्चा एक स्कूल के इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसको भी पेरेंट्स, क्यों, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस में है कि नहीं मिला तो, ये जो फियर क्रिएट हो रहा है वो बच्चे को उस एज से ही हम वो डेवलप कर देते कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं हुआ तो तुम यू आर अ फेलियर.
पर अब हम यहाँ पे क्या, पेरेंट अगर देख रहे हैं तो वो ये कहेंगे ब्लेम गेम यहाँ शुरू होगा, स्कूल्स ऐसे हो गए हैं, एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है, पूरा माहौल ऐसा हो गया है, उसमें मेरे को तो करना ही पड़ेगा, अगर मैंने नहीं किया तो जिस स्कूल में मैं बच्चे को डालना चाहता हूँ.
हमें क्या क्या करना होगा, हमें पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा, बहुत अच्छी तरह से तैयारी करानी होगी, उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना होगा, सिर्फ हमें एक चीज़ नहीं करनी होगी, फियर नहीं क्रिएट करना. वी नॉट सेइंग वी नॉट गोइंग टू स्टडी, ऑब्वियसली जो है फिर माहौल, हमें माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता. स्ट्रेस वर्ड को ही अगर हम देखें तो साइंस में स्ट्रेस वर्ड को हम लेते तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाई रेजिलियंस. तो प्रेशर तो है ही ना बाहर, पहले तो कभी स्कूल में आए, व्हेन आई वेंट टू स्कूल आई डिडंट हैव टू गो फॉर एन इंटरव्यू, वो मेरे पेरेंट्स गए एडमिशन करा के वापस आ गए और कहा, एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ द सिटी, और कहा आपका एडमिशन हो गया, आपको स्कूल जाना है. आज वो छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कितनी मेहनत से गुजरते, तो ठीक है प्रेशर चेंज हो रहा है, हम बैठ कर उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन जितना प्रेशर न्यूमरेटर है ना बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर रेजिलियंस इनर स्ट्रेंथ, उस प्रेशर को फेस करने की मेरी अपनी आंतरिक शक्ति. मेटल शीट्स हैं, इंडस्ट्री में हम जाते हैं अलग अलग मेटल शीट्स हैं, हर मेटल शीट के ऊपर सेम प्रेशर अप्लाई किया जाता, लेकिन हर मेटल का स्ट्रेस फैक्टर अलग अलग, क्योंकि इनर स्ट्रेंथ अलग अलग. तो हम में से भी हर एक की अपनी अपनी एक आंतरिक शक्ति है, प्रेशर हर एक के ऊपर इक्वल है, लेकिन जिसकी जितनी इनर स्ट्रेंथ होगी वो उस प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से फेस कर पाएगा. आज क्या हो रहा, प्रेशर तो बढ़ रहा है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर पर ध्यान नहीं दे रहे और फियर क्रिएट करते जा रहे, फियर
उसको तो वीक करते जा रहे,
डिनोमिनेटर घटता जा रहा है तो न्यूमरेटर बढ़ता जा रहा है, डिनोमिनेटर घटता जा रहा है,
ऑफ कोर्स स्ट्रेस फैक्टर
बढ़ता जा रहा है इतना ज़्यादा, एंड न्यूमरेटर इज ऑफ कोर्स इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट ना, क्योंकि परिवर्तन बहुत तीव्र गति से है, लेकिन क्योंकि ध्यान नहीं रखा डिनोमिनेटर भी बहुत तीव्र गति से घटता जा रहा, एंड स्ट्रेस फैक्टर इज इंक्रीजिंग वेरी वेरी फास्ट, इट विल गो बियॉन्ड आवर कंट्रोल.
वी रियली नीड टू सी, यू नो, और हम ये कहते हैं कि हमने तो अपने आप को सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली इसलिए क्रिएट कर रहे हैं, यू नो सिचुएशंस ही ऐसी हैं तो हम अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग तो तैयार करते जा रहे हैं. वो तैयारी जो बाहरी है, जो चीज़ें करनी है, वो तो ठीक है, अमेजिंग, वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन माई इनर स्ट्रेंथ, यू नो. तो अगेन इनवर्सली प्रपोर्शन है मेरी इनर स्ट्रेंथ पे. तो अगर मेरी इनर स्ट्रेंथ, प्रेशर को तो हमें, क्योंकि हम बाहर की चीज़ों को कुछ नहीं कर सकते, जो मेरी इनर स्ट्रेंथ है उसे मैं जितना बढ़ाती जाऊँगी, बच्चे की इनर स्ट्रेंथ को जितना बढ़ाती जाऊँगी, स्ट्रेस अपने आप कम होता जाएगा. इट्स ब्यूटीफुल,
एंड स्ट्रेस कम होता जाएगा, परफॉर्मेंस अपने आप अच्छे होती जाएगी. हम सिर्फ परफॉर्मेंस पर फोकस्ड हैं, जो स्टेबल होगा, कॉन्फिडेंट होगा, काम होगा, वो परफॉर्म नहीं करे अच्छा ऐसा हो नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल.
वेरी ट्रू. और हम अपने आप भी देखते आए हैं कि जब हम जितना अभी तक भी तो बच्चे 10th से पहले भी तो बच्चा पढ़ रहा होता था और वो परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा होता था, मतलब बच्चा अपने आप अपनी बहुत सारी चीज़ें कर रहा था. तो हमें अपने आप को देखना है कि हमने एटमॉस्फेयर कैसा क्रिएट किया है, पूरा जो हमने अपने लिए जो स्ट्रेस फैक्टर है उसे कितना ज़्यादा आगे बढ़ाया है, तो वही तो फिर फ्लो होके बच्चे तक जा रहा है. सिचुएशंस, टीचर, स्कूल, लोग, सब कुछ कहते रहेंगे, वो जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो बढ़ता ही जाएगा. अगेन, जितना वो बढ़ेगा उतना ही मुझे अपने अंदर की आंतरिक शक्ति को, और मैंने देखा अमेजिंग, आई नेवर रियलाइज इट, कि जितना वो बढ़ रहा था मैंने न्यूमरेटर को एक्चुअली कम करती गई हूँ मैं, क्योंकि वो मैं डरती गई डरती गई डरती गई. तो मुझे ना डरते हुए अपनी उस इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाना है. यू नो इट्स एक्चुअली सो ईजी इफ़ यू लुक एट इट, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला कभी नहीं समझा था. थैंक यू सिस्टर शिवानी. लाइक आज हम एक फैक्टर पर बात कर पाए हैं, लेकिन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स वी हैव हिट. तो इस पर आप ज़रूर सोचें. और यू नो अभी तक का जो बिलीफ सिस्टम्स पर हम जी रहे थे कि जितना प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मैंने अपने आप को उसी हिसाब से तो मोल्ड किया है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो ऐसी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी. करना और किस स्थिति में मैं करूँगा, ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे. पढ़ाना भी है आपको बच्चों को, आपको सब कुछ करना है, तैयारी भी करानी है, बट किस थॉट प्रोसेस के साथ, किस स्टेज में रहकर कराना है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके लिए राजयोग में हम बार बार मेडिटेशन की बात करते हैं, इट हैज़ टू बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो अगर कोई मन में बात उठती है, कोई सवाल उठ रहा है, स्ट्रेस से जुड़े हुए आपका कोई बिलीफ सिस्टम है, आपका स्वागत. आप हमें कॉल करें या फिर आप हमें ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. स्ट्रेस से जुड़ा एक बिलीफ सिस्टम कि स्ट्रेस इज नॉर्मल, इसको आज हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाए कि कैसे इसको नॉर्मल मान के हमने अपनी लाइफ में स्ट्रेस को बढ़ाया है. आसान सा सोल्यूशन है, एक नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट करें, स्ट्रेस इज नॉट नॉर्मल और स्टेबिलिटी इज नॉर्मल, रिलैक्स्ड रहना नॉर्मल है. फिर देखें कि कैसे जो सोल्यूशंस निकलते हैं. थैंक यू सो मच ओम शांति. और आपसे भी विदा लेते हैं, लेकिन आने वाली कड़ियों में कुछ और बातें करेंगे. ओम शांति.